गुड मॉर्निंग। आप ऑब्जर्व करना, मैं वास्तव में प्रेजेंटेशन के रूप में ले रहा हूं, परंतु आप शुरू से अंत तक एक एक बातों को ऑब्जर्व करिए। कई बातें जो डॉक्टर प्रेम भाई ने आपको बताई है बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कैसे कोई चीज को डेवलप किया जाता है, या तो किस प्रकार से हम मोटिवेट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, हर पहलुओं को आप ऑब्जर्व करेंगे। सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं उतना ही ऑब्जर्व नहीं करना, एग्जाम्पल देने का तरीका भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो उससे मैक्सिमम जो इफेक्ट है वो हो सकती है। और इतने सालों से, करीब 24 वर्षों से मैं प्रवचन देता हूं, तो उनमें जो जो बातें हमने सीखी है वह सारी बातें आपके सामने रखना चाहते। लक्ष्य यही है कि कोई भी बात छुपाए नहीं, जो भी हमें पता है सब कुछ आपको बता दें, ताकि 24 वर्षों में जो हमने सीखा है वो आप यह 5 दिन में सचमुच सीख करके जाए और हमारी तरह भले एक यूनिक प्रेजेंटर बने। किसी को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप अपने तरीके से एक बहुत अच्छे यूनिक प्रेजेंटर बन सकते हैं। ओम शांति। सभी एक बार खड़े हो जाएंगे, अपने अपने पार्टनर चुन लो। हाँ विनय भाई यहाँ आइए। हाँ विनय भाई मेरे पार्टनर हैं, ऐसे सभी एक एक पार्टनर चुनिए। हाँ सबके पास पार्टनर है। हाँ भाइयों के भाई पार्टनर, बहनों के बहन बनेंगे। हाँ है, किसके पास नहीं है पार्टनर, वहां चले जाओ। अच्छा हाँ अभी ऐसे खड़े हो जाओ आमने सामने। खड़े हो गए सब। जो विनय भाई की ओर खड़े हैं वो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करिए, जितना जोर से कर सकते बंद करिए, और जो मेरी ओर खड़े हैं मुट्ठी को खोल के। अच्छा हाँ ओके, ओम शांति। भले बैठ बैठ सकते हैं। थैंक यू। हाँ बैठ। आप में से अधिकतर हाँ फोर्स करके आपके पार्टनर की मुट्ठी को खोलने की कोशिश की। हाँ जो पहली बार इस आइस ब्रेकिंग को देख रहे हैं उनमें से किसी ने सोचा कि आप अपने पार्टनर को रिक्वेस्ट करते कि भाई बहन खोल दे तो खोल देता। आप ऐसा भी कहते कि हम अच्छे दोस्त हैं हाथ मिलाएंगे तो भी खोल देते। लेकिन आपने पहले देखा था कि फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा। जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम ये आइस ब्रेकिंग कर रहे हैं और अगर आपने ऐसा सोचा तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन देना ना। देखो ताली तो बजाओ, तो बहन को तो ऐसा सचमुच करना चाहिए हमें। और जो पूरा लाभ लेना है इस सारी ट्रेनिंग से, तो न केवल सुनना परंतु साथ साथ में सोचना भी। और सिर्फ सोचना नहीं है, कोई नए तरीके से सोचना है। मुट्ठी को खोलना था तो कोई नए तरीके से अगर आप सोचते तो आराम से विदाउट फोर्स मुट्ठी खुल जाती। ऐसे ही तनाव से भी मुक्त होना है, कोई नए तरीके से हम सोचने लगेंगे तो फोर्स करे बिगर भी आप स्ट्रेस फ्री हो सकेंगे। सिर्फ सोचना ही नहीं है परंतु साथ साथ में उसको फील भी करिए। जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसका फील करेंगे तो भी ज्यादा फायदा होगा। हंसने की बात हो तो जोर से हंसिए। आपको पता है कैसे हंसना होता है? हाँ नहीं आता है? देखो बच्चे जब छोटे होते हैं तो दिन में 80 बार हंसते हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हंसना भूल जाते हैं। हाँ तो क्या करना पड़ता है प्रोफेसर? हाँ क्या करना पड़ता है? लाफिंग क्लब खोलने पड़ते हैं। हाँ? कि कम से कम लोग जाके आर्टिफिशियली तो हंसे। हाँ तो जोर से हंसा, आप नहीं हंसेंगे तो आपको आर्टिफिशियली हंसाना पड़ेगा। जो भी दुख की बात हो तो भी फील करिए। जितना आप रियलाइजेशन करेंगे उतना ये प्रेजेंटेशन से आपको अच्छा फायदा होगा। और अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स भी देना। अब जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे मेरे अंदर में जो बात है वो बाहर निकलेगी। आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो मैंने जो तैयारी की वो भी शायद मैं भूल जाऊंगा। तो अच्छा से रिस्पॉन्स भी देना। वर्तमान समय क्यों आवश्यकता है कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सबसे ज्यादा इन चीजों को सिखाना चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि आने वाले 20 सालों में डिप्रेशन व सेकेंड कॉमनेस्ट बीमारी हो जाएगी। हार्ट डिजीज के बाद सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट होंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम डिप्रेशन से बचे रहे तो आवश्यकता है कि हमारे डे टू डे जो छोटे छोटे भी तनाव है उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक शब्द नहीं है। मतलब क्या कि स्ट्रेस मैनेज करो और स्ट्रेस आता रहे, हाँ रोज आएगा, रोज उसको आप मैनेज करो, रोज उससे लड़ना पड़ेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी अच्छी बात है कि स्ट्रेस से सचमुच कुछ हद तक तो हम फ्री हो जाए और इसका सबसे अच्छे से अच्छा हम फायदा उठा सके। इसलिए हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। हाँ सभी कमर को सीधी रख करके बैठेंगे, हाँ अपने पास जो चीज है भले नीचे रख दो, दोनों पैरों को जमीन पर रख दीजिए, हाँ थोड़ी दूरी पर। आराम से कमर को सीधी रख करके बैठिए, हाँ हाथों को भी हल्का छोड़ दो। आराम से बैठिए और सामने जो एक पॉइंट है उस पॉइंट को ध्यान से देखते रहो, सारे शरीर को एकदम हल्का कर दीजिए और उस पॉइंट को ही एक जैसा कंटिन्यूअसली देखते रहो, सारा शरीर हल्का हो रहा है, सारा शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है, आपका पूरा ध्यान उस पॉइंट पर ही है, सारा शरीर रिलैक्स हो रहा है। इसी तरह से इस प्रेजेंटेशन में भी जो बातें बताई जाएगी उसमें भी आप पूरा खो जाएंगे, उसी में मन को पूरी तरह से एकाग्र कर देंगे। अगर मन में और कोई विचार आए तो भी दोबारा तुरंत ही उसे प्रेजेंटेशन की कंटेंट की ओर ले जाएंगे सारा, और एक सवा घंटा जब तक हम इस विषय की चर्चा करेंगे पूरा आप उसी में खो जाएंगे। जो जो बातें आप सुनते जाएंगे तुरंत उसके ऊपर सोचते भी जाएंगे और आपको यह विषय जल्द ही याद रह जाएगा। पूरा ध्यान इस प्रेजेंटेशन से अधिक फायदा लेने की ओर ही आपका होगा। शरीर और मन दोनों रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह से तैयार है कि इस प्रेजेंटेशन से अधिक फायदा लिया जाए। ओम शांति। तो इस प्रकार अपने मन और शरीर को तैयार करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा फायदा इस प्रेजेंटेशन से लेंगे। आपके कोई प्रश्न भी हो तो भले अंत में पूछना, एक बार सारी बात मैं प्रेजेंट कर दूं तो सबसे अच्छा होगा। और आपको जो मैनुअल दिया गया है उसमें फर्स्ट प्रोबेबली पेज नंबर 6 पर अधिकतर सभी स्लाइड्स है, कुछ एक स्लाइड्स जो है वो आगे है, राइट थिंकिंग का आपका एक टॉपिक है उसमें से थोड़ी स्लाइड्स ली गई है, जो आपको न मिले भले नोट करना। अच्छा अब हमें क्यों तनाव को कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण भल हम सब जानते हैं कि तनाव से करीब 60-70% बीमारियां होती है, सरदर्द से लेकर के हार्ट अटैक तक और चमड़ी की बीमारियों से लेकर के हड्डी की बीमारियां तक स्ट्रेस के कारण हो सकती है। परंतु शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों प्रत्येक व्यक्ति जो यहां पर उपस्थित है उसे तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर तनावपूर्ण परिस्थिति आपके मस्तिष्क को भी माइक्रो डैमेज निर्माण करती है। ऐसे प्रयोग भी किए गए हैं मायो क्लिनिक में प्रयोग किया गया, जिसमें देखा कि पहली बार जब पेशेंट मायो क्लिनिक में आए और उनको अच्छी तरह से चेक किया गया तो भी यह पता चला कि उनकी समस्या सिर्फ साइकोलॉजिकल है, उन्हें कोई ब्रेन डैमेज के साइंस नहीं है। उन्हें नर्वसनेस थी, किसी को डिप्रेशन था, किसी को एंजाइटी थी, परंतु यही पेशेंट दोबारा मायो क्लिनिक में आए। कोई पेशेंट 6 मास के बाद आए, कोई पेशेंट 5 साल के बाद भी आए, और जब दोबारा यह मायो क्लिनिक में आए और उनको चेक किया गया तो पाया कि अब उनकी समस्या सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, अब उनका ब्रेन भी डैमेज हुआ है। ब्रेन डैमेज की भी जो साइंस है वह साइंस दिखाई दे रही है। इसकी सारी चर्चा करने के बाद रिसर्चर्स ने कहा कि इतने वर्ष जो इनको स्ट्रेस थी, वह स्ट्रेस के कारण या तो उनकी जो ब्लड वेसल्स है वह कंस्ट्रिक्ट हुई ताकि कम ब्लड सप्लाई मिली ब्रेन को, कुछ एक इमोशंस में हो सकता है कि उनकी जो माइक्रो ब्लड वेसल्स थी वो कैपिलरीज रप्चर भी हो गए और थोड़ा सा ब्रेन डैमेज हुआ। स्ट्रेस के कारण फैट की मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होती है कि जो भी ब्रेन के सही फंक्शंस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक इंपॉर्टेंट कारण है कि थोड़ा सा भी तनाव न हो। जब जब आप तनाव का सामना करते हैं यह सोचिए कि हो सकता है कि मेरा ब्रेन भी इस वक्त डैमेज हो रहा है और मुझे उसे रोकने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। एल यूनिवर्सिटी में और एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने देखा कि करीब 30% एम्प्लॉयज जो वहां पर थे, वो 30-40% एम्प्लॉयज में एक्सेसिव स्ट्रेस थी। थोड़ी सी स्ट्रेस तो सबको होती है, कहते हैं कि बच्चे का जन्म होता है तब से ही तनाव शुरू हो जाता है कि कौन से स्कूल में एडमिशन देंगे, बुढ़ापे में भी टेंशन। आज देखो ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं, एक समय जरूर ऐसा आएगा कि जब वहां भी एडमिशन लेना पड़ेगा। आपकी आयु 40 साल की होगी तो बच्चे पूछेंगे कि डैडी मम्मी हाँ ओल्ड एज होम में एडमिशन ले ले, नहीं तो आगे चल के वहां ओवरफुल हो जाएगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सभी को तनाव है। देखो पति पत्नी के संबंधों में सबसे ज्यादा तनाव है। हाँ शादी करते हैं तो शुरू में पत्नी कैसी लगती है, हाँ कैसी लगती है चंद्रमुखी जी, हाँ 2 साल के बाद क्या कैसी लगती है, हाँ सूर्यमुखी जी, देखो बहने ही बोल रही है हाँ? और 10 साल के बाद हाँ ज्वालामुखी जैसी लगती है। तो ऐसा क्यों, वास्तव में देखिए कि हमारा जीवन ऐसा हो कि इस प्रकार की परिस्थिति आए ही नहीं। स्ट्रेस को अगर हम ठीक प्रकार से मैनेज करें, जो टेक्निक्स की हम चर्चा करने वाले हैं उसको मैनेज करें, तो ये परिस्थिति आएगी नहीं। हाँ टेक्निकल बातें बताने से पहले आपको एक सिंपल बात बताता हूं। एक ऑफिसर थे, उनके घर में एक फ्रेंड है, वो खाना खाने के लिए आए। तो जब वो खाना खा रहे थे तो बीच बीच में वो ऑफिसर किचन में जाकर के कोई डिश लेके आते थे और उनको देते थे, फिर से थोड़ी देर में जाते थे, फिर से आते थे, ऐसा बार बार हुआ। तो वह मित्र से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा क्यों आपकी पत्नी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा देखो आपको सत्य बात बताता हूं कि मेरी पत्नी को पोलियो है कि जिसके कारण वह नहीं आ सकती, उसने खाना तो बनाया है परंतु मुझे लेने जाना पड़ता है। तो कहते आप इतने अच्छे ऑफिसर है फिर भी लड़की को पोलियो था, उसके साथ शादी की। तो वो एक सेकंड तो कुछ नहीं बोले, फिर उनको पूछा हाँ कंसार मतलब, ये गुजराती में कंसार एक स्वीट डिश होती है, तो वह कंसार खाने के लिए दिया था। तो उसको कहा कि आपको यह कंसार कैसा लगा, कहते बहुत मीठा। तो उन्होंने कहा हमारा संसार इससे भी मीठा है, हाँ मैंने सोच समझ के शादी की थी और क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हमारा संसार यह स्वीट डिश से भी ज्यादा मीठा है। तो वास्तव में अगर हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें तो किसी भी क्षेत्र में बच्चे के जन्म में भी आनंद हो सकता है। बुढ़ापे को भी अच्छे से अच्छा हम बिता सकते हैं और जो मैरिड लाइफ है वो भी बहुत ही सुख से व्यतीत हो सकती है। और स्ट्रेस से बीमारियां कैसे होती है, अगर आप उस इक्वेशन को भी देखेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ऑर्गेनिक फैक्टर्स, हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है कुछ बीमारियों से, प्लस स्ट्रेस, और साथ साथ में हाँ वो दोनों जितने ज्यादा होंगे शायद बीमारियां अधिक होंगी, और डिवाइडेड बाय कॉम्पिटेंस, आप कितने कॉम्पिटेंट है, आपके पास कोपिंग स्किल्स कैसी है, जो हम सिखाना भी चाहते हैं आज की कैसे कोपिंग स्किल्स को डेवलप करें, प्लस अवेलेबल सपोर्ट आपका कैसा है, कि आपको फैमिली और फ्रेंड से कैसा सपोर्ट मिलता है, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट, और जितनी ज्यादा उतनी बीमारियां कम। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स पर भी स्टडी की गई है कि जो पेशेंट्स को अच्छा सपोर्ट मिलता था तो वह बहुत लंबा जीते थे। तो इसके कारण यह सपोर्ट को भी हमें डेवलप करना है, कॉम्पिटेंस कोपिंग स्किल्स को भी हम जितना डेवलप करते जाएंगे बीमारियां नहीं होंगी, और तनाव को कम से कम करना है। एक बहुत अच्छी नॉवेल है जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि दूसरे ग्रह के लोग पृथ्वी पर आते हैं, जैसे हम मंगल पर जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही उस ग्रह के लोग पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी के लोगों की सारी दिनचर्या का अभ्यास करते हैं। अच्छी तरह से उसमें वर्णन है कि पृथ्वी के लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या क्या करते हैं, और यह सारा देखने के बाद अंत में यह लोग इस निर्णय पर आते हैं कि यह पृथ्वी के लोग अजीब से लोग हैं, ये पृथ्वी के वासी इतने अजीब से हैं कि वो अपने लिए ही समस्या निर्माण करते हैं, फिर उसके लिए कंप्लेन करते हैं। मेजोचिस्ट मतलब कि जो व्यक्ति अपने आप को दुख देता है, सैडिस्ट मतलब कि जो दूसरे को दुख देता है और खुद सुख का अनुभव करता है, खुद को अच्छा लगता है, परंतु मेजोचिस्ट वह है कि जो अपने आप को दुख देता है और फिर उसको उल्टा अच्छा लगता है। तो यहां कहा कि फिर ये लोग कंप्लेन करते हैं, इसलिए हमारी स्थिति ऐसी बन गई है, कहते हैं कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। कुछ टेंशन नहीं हो तो हम टेंशन में आते, तो इसीलिए इस प्रकार की जो अवस्था है उससे हमें पूरी तरह से मुक्त होना है। और यह स्ट्रेस शब्द को प्रोफेसर हेंसेल उन्होंने प्रचलित किया है, उन्होंने काफी रिसर्च की, 1930s से उन्होंने रिसर्च की है, और ऐसे करते करते यह शब्द बहुत ही प्रचलित हुआ। कहते हैं कि पहले जो शब्द था वह फ्रेंच वर्ड था डिस्ट्रेसी, मतलब कि ऑपरेशन, सप्रेशन, दबाना, और आगे चल करके यह स्ट्रेस शब्द है वह प्रचलित हुआ। स्ट्रेस की अगर सिंपल परिभाषा हमको देखनी है कि कैसे पता चले कि मुझे स्ट्रेस है या नहीं है, तो एक सिंपल सी बात है कि हर परिस्थिति प्रेशर लाती है, छोटी सी भी बात है तो वह छोटी सी बात भी प्रेशर लाती है, जैसे कि भी एग्जाम में बच्चों को जाना है तो वो एग्जाम का एक प्रेशर है, वह करीब करीब हर बच्चे को एक जैसा प्रेशर है क्योंकि एग्जाम है, और वो जो प्रेशर डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी। अभी जिन बच्चों की कोपिंग एबिलिटी नहीं है, जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है, तो उनको ज्यादा स्ट्रेस होगा, हाँ उनको लूज मोशन हो जाता है, कई लोगों को बुखार आ जाता है, इसको एग्जामिनेशन फीवर भी कहा गया कि एग्जाम के दिनों में बुखार आता है, और कई विद्यार्थी है एग्जाम के दिन में अच्छा पढ़ पाते हैं, उल्टा एग्जामिनेशन हॉल में उनकी थिंकिंग क्लियर होती है, जो पहले विचार नहीं आते थे ऐसे अच्छे विचार उनको एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, क्योंकि उनकी कोपिंग एबिलिटी अच्छी है। तो कोपिंग एबिलिटी को हमें बढ़ाना, इससे भी और गहराई से स्ट्रेस को समझना चाहिए। नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे जीवन के कई पहलू है वास्तव में, कि आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपको बच्चों के साथ डील करना है, आपको अपना जॉब करना है, ये जो अलग अलग लाइफ के एरियाज है, तो उनमें जो डिमांड है वो सिचुएशन की डिफरेंट हो सकती है। कि भी फैमिली लाइफ में कम है तो बच्चों के साथ डील करने में ज्यादा प्रेशर आता है, जॉब करने के लिए ज्यादा तो और ज्यादा प्रेशर आता है, वो हर एक का भिन्न भिन्न है। और इसके साथ साथ एक तो यह कर्व है और दूसरा कर्व है आपकी कोपिंग एबिलिटी का। आपकी जो कोपिंग एबिलिटी का कर्व है, अगर वो उसको क्रॉस कर जाते हैं, डिमांड ज्यादा है, कोपिंग एबिलिटी कहीं कम है आपकी, तो वहां पर आपको स्ट्रेस होगा। मैं बहुत अच्छी तरह से एक अकाउंटेंट को जानता हूं कि जिनकी जॉब को डील करने की कैपेसिटी इतनी अच्छी थी कि उनको 0.1% भी ऑफिस में तनाव नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी के साथ डील करने की कोपिंग एबिलिटी इतनी कम थी कि घर आते ही उनको टेंशन हो जाता था, और इतना टेंशन होता था कि वह रात को 10 बजे तक घर नहीं आते थे। उनको पता था मैं जल्दी घर जाऊंगा तो दुखी होना पड़ेगा, इसलिए अगर कभी जल्दी आ गए तो रेलवे स्टेशन पे बैठे रहेंगे, कहीं गार्डन में बैठे रहेंगे, परंतु घर नहीं जाएंगे। तो यह क्लासिकल उदाहरण है कि कैसे कोई एक एरिया में भी, आज कहीं है कि जो शायद मैरिड लाइफ को भी अच्छी तरह से डील कर पाते लेकिन बच्चों के साथ डील नहीं कर पाते, बच्चों के साथ डील करने की उनकी स्किल्स कमजोर है, तो इसके कारण उस एरिया में उन्हें टेंशन होता है। तो आप अभी ये चेक करिए कि आपको कहां कहां स्ट्रेस हो रहा है, और एक ओपन होकर के लिखना भी चाहिए। वास्तव में एक एक्सरसाइज भी आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय कम है, परंतु सिंपल एक्सरसाइज है कभी आप करना, कि आराम से बैठिए एक रिलैक्सिंग चेयर में, सामने एक अच्छा से पेपर रखिए और हाथ में पेन लीजिए, एकदम आराम से पेन को पकड़िए और फिर रिलैक्स होकर लिखना शुरू करिए कि मुझे तनाव होता है जब, फिर आप लिखते जाइए कि जब बच्चे परेशान करते हैं, जब काम का प्रेशर होता है, जब कोई मेरी टीका करता है, जब कोई चीजें याद रखनी है, लिखते जाइए लिखते जाइए। अगर ये एक्सरसाइज आप थोड़ी देर करेंगे तो पाएंगे कि शुरू में तो जो कॉन्शियसली आपने सोचा है वह बातें आप लिखेंगे, परंतु अगर आप लिखते गए दो चार बार, अगर आप ये प्रैक्टिस करो तो पाएंगे कि जो अंदर में बातें हैं, कि जो शायद आप स्वीकार नहीं भी करते, जो बातें आपके डीप कॉन्शियसनेस में है, वो डीप कॉन्शियसनेस की बातें भी सरफेस पर आएगी और आप वो लिखने लगेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। जैसे कि भी एक बार एक किसी ने लिखा कि भी औरों की तरक्की देखता हूं तो मुझे टेंशन होता है, भी कॉन्शियसली शायद हम ऐसी बातें नहीं लिखेंगे कि भी किसी की तरक्की को देख के मुझे जेलसी होती है, परंतु यह जो डीप कॉन्शियसनेस से अगर वो ऊपर आया तो वह आप लिख भी देंगे। तो इसलिए ये एक्सरसाइज भी जरूर करके फाइंड आउट करिए कि कहां कहां कब कब आपको स्ट्रेस होता है, कौन से इस प्रकार के सिचुएशन है। और अगर आप स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करें तो एक तो है जॉब स्ट्रेस या तो और भी डिफरेंट एरियाज की स्ट्रेस, और नीचे आप देख रहे हैं वह है बीमारियां, परंतु उसके बीच में पर्सनल फैक्टर्स कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 लोगों के सामने एक प्रकार की परिस्थिति आए तो 20 को ही टेंशन होता है, दूसरे हंसी को क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह उनके पर्सनल फैक्टर है बहुत सारे। एक तो पर्सनल फैक्टर जो बिल्कुल अब आज एक्सेप्टेड है वह है टाइप ए पर्सनालिटी। कुछ लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जिनको सब चीज परफेक्ट चाहिए, जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं, टाइम के बड़े कॉन्शियस होते हैं, ओवर कॉन्शियस वास्तव में, ऐसे लोगों को बैठे हुए भी आप देखो तो पता चल जाएगा। देखो बैठेंगे तो भी शांति से नहीं बैठेंगे, पैरों को हिलाएंगे या तो कुर्सी में एकदम आगे आके बैठेंगे, वहां भी जैसे भागने की तैयारी में है। तो ये जो टाइप ए लोग हैं उनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हार्ट की बीमारियां भी उन्हें अधिक होती है। और इसके द्वारा और कुछ भी मैं बताना चाहता हूं कि पर्सनल फैक्टर आपके कंट्रोल में है, आज कई एक्सपर्ट्स भी इसको मानने लगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात को स्वीकार न भी करे, परंतु गहराई से सोचना तो यह बात सत्य है कि सचमुच परिस्थितियां तनावपूर्ण नहीं है। परिस्थिति तनावपूर्ण नहीं करती, आपकी मनः स्थिति तनाव निर्माण करती। सिर्फ आपको दो उदाहरण दूंगा, एक घंटे तक इस बात को सिद्ध कर सकते, क्योंकि यह बात एक आपको सचमुच कन्विंस हो गई तो आप फिर और किसी को दोष नहीं देंगे, परिस्थिति को दोषी नहीं समझेंगे, आप मनः स्थिति में परिवर्तन लाएंगे। लंदन में दो डॉक्टर थे, उनकी पत्नियां किसी के साथ भाग गई। जब एक डॉक्टर को पता चला तो बड़ा नर्वस हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया। जब दूसरे डॉक्टर को यही संदेश मिला तो भी वह बिल्कुल शांत था, स्वस्थ था। दूसरे दिन बहुत तेज गति से अपनी गाड़ी चला रहा था, बहुत फास्ट चला रहा था, जो परमिटेड स्पीड है उससे भी फास्ट गाड़ी चला रहा था। कुछ समय के बाद उसने अपने गाड़ी के आईने में देखा कि ट्रैफिक पुलिस भी उसका पीछा कर रही है, तो उसने अपनी स्पीड को और भी बढ़ा दिया, परंतु ट्रैफिक पुलिस ने उसे कैसे भी ओवरटेक किया और रोक लिया। और फिर उसको पूछा कि भाई देख, आज रविवार है, तो मुझे एक सही कारण बता दे कि इतना फास्ट गति से गाड़ी क्यों चलाता था, तो मैं तुझे चार्ज नहीं करूंगा। उसने सीधा उसकी आंख में देखा और कहा कि क्योंकि आप पूछते हैं तो सत्य जवाब ही आपको दूंगा, मेरी पत्नी ट्रैफिक पुलिस के साथ भाग गई है। जब मैंने मेरी गाड़ी के आईने में देखा कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मैं समझा कि आप उसे वापस लेके आते हैं, इसलिए उसे बचने के लिए फास्ट गति से गाड़ी चला रहा है। तो कहने का भाव कि एक ही परिस्थिति में बहुत ही भिन्न प्रतिक्रियाएं हो सकती है। दूसरा उदाहरण कि जो बिल्कुल जिसको कहेंगे कि व्यवहारिक जीवन का उदाहरण देंगे। बंबई में दो भाई थे, एक भाई बहुत पैसे वाला था, दूसरा भाई वो गरीब था। वो पड़ोस पड़ोस में रहते थे, भाई एक चौल में रहता था, जो पैसे वाला भाई वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता था, और जो गरीब भाई था उसके तीन बच्चे थे। तो गरीबी के प्रति इन तीनों बच्चों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल भिन्न थी। सबसे बड़ा लड़का था, वो तो पिताजी को गालियां देता था कि भी अगर आप हमको अच्छी तरह से पाल नहीं सकते तो जन्म क्यों दिया। जो सबसे छोटा बच्चा था वह भी उसका स्वमान बहुत कमजोर था, वो सोचता था कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, तो उसने भी कोई पढ़ाई नहीं की। परंतु जो बीच वाला लड़का था वो रात दिन पढ़ता। जब उसके कजिन ब्रदर्स घूमने के लिए कहीं जाते थे तब भी वह पढ़ता था, और आखिरी वह सर्जन बना, आज अमेरिका में सेटल्ड है। और एक बार उसे ओरेशन अवार्ड मिल रहा था तब उसने यह कहानी अपनी सुनाई। उसने कहा कि मैं इतना बड़ा सर्जन क्यों बना, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे, अगर मेरे मां बाप पैसे वाले होते तो शायद मैं भी नहीं पढ़ता। और जब उसने कहा तब बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, लोगों की आंखों में आंसू थे। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि परिस्थिति कैसी भी हो वह तनाव निर्माण नहीं करती, उसके प्रति जो हमारा अप्रोच है वह स्ट्रेस निर्माण करता है। सिचुएशन आर लाइफलेस, वी गिव लाइफ टू सिचुएशन बाय अवर रॉन्ग अप्रोच। तो इसलिए इस एक बात को आप अच्छी तरह से अगर अपने आप को समझा देंगे तो तनाव से मुक्त होने का जो सही कदम उठाना चाहिए वह सही कदम आप उठाएंगे, अन्यथा परिस्थितियों को दोषी मानते रहेंगे कि जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर अली को कंसल्ट करो। हाँ, कौन है डॉक्टर अली पता है? हाँ, नहीं मालूम कौन है डॉक्टर अली? हाँ, स्लाइड में आ गया, अभी तो बोलो। हाँ, डॉक्टर अली कौन है? ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्ट, एल स्टैंड्स फॉर लिसन और आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोस्पेक्ट। तो डॉक्टर अली को कंसल्ट करे तो वो आपको समझा देगा कि पहले तो एक्सेप्ट करो कि मुझे स्ट्रेस है, और हरेक को तनाव आता है। जैसे वक्ताओं के भी, अच्छे लोगों के बीच में बोलना, हर वक्ता को थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होता है। तो इसलिए जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो कहते कि 50% आपकी जीत हो गई, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसी के कारण अंदर अंदर समस्या बढ़ती जाती है और आप कुछ कर नहीं पाते। सेकेंड बात है लिसन। आप कहेंगे भी तनाव को क्या सुनना है, परंतु तनाव की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि स्ट्रेस इज अ मैसेंजर विच हैज कम टू टेल यू दैट देर इज अ नीड टू चेंज। बहुत बड़ा अच्छा मैसेंजर है। आपका प्यून बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर के आए और आप उसको सुनो नहीं तो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसे ही जब जब भी छोटा सा भी तनाव हो तो आपको मैसेज है। भी कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तुरंत जो आपको अंदर में फीलिंग होती है आप उसको सुनिए तो पता चलेगा कि भाई टीका भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। किस पर जेलसी होती है देखिए क्या अंदर में फीलिंग हो रही है। आपका सांस फूल रहा है, सांस भारी हो रहा है, पेट में गड़बड़ हो रही है, पी कमर में कुछ हो रहा है, जो भी आपको फीलिंग हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, आप अच्छी तरह से हर परिस्थिति को एक जागरूक होकर के, अवेयर होकर के उस परिस्थिति को देखेंगे, उसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। हाँ, सभी हाथ को ऐसा करिए, हाँ एकदम नजदीक लाइए, हाँ एकदम नजदीक, जितना हो सके नजदीक लाइए, टच नहीं करना, एकदम नजदीक लाइए। हाँ, सवेरे भी हमने किया था। क्या होता है हाथ के बीच में वाइब्रेशन आते हैं, हाँ तो वह भी एक फीलिंग है वास्तव में। ऐसे ही चलते हो, हाथ हिल रहे हैं, उस फीलिंग के बारे में भी जागृत हो जाओ। खाना खा रहे हैं तो भी जागृति से खाना। एक बहुत अच्छी किताब है, उसका टाइटल है ड्रिंकिंग टी एंड लिविंग लाइफ। मैंने कहीं पर यह टाइटल पढ़ा तो बहुत आकर्षण हुआ कि भी क्या संबंध है चाय पीना और जीवन जीना। और जब इस किताब को पढ़ा तो उसमें लिखा है कि भी चाय भी कैसे पीनी चाहिए। ये सारी किताब इस बात पर है कि सारा जीवन अवेयरनेस के साथ व्यतीत करो। हर काम चलते हो तो भी जागृति के साथ चलो, एक पैर उठाया दूसरा पैर उठाया, क्या हो रहा है। ऐसे हर कार्य जागृति के साथ करेंगे तो कम चाय में भी आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और पता भी चलेगा। ये अभ्यास क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आप सचमुच जान पाएंगे कि कब कब मुझे थोड़ा सा भी 0.1% भी स्ट्रेस हुआ आपको पता चल जाएगा, और उसे कम करना इजी है। जब 70% हो गया फिर उसे कम करना मुश्किल है। इसलिए चाइना में ऐसी कसरत भी डेवलप की गई है जिसको कहते हैं ची कॉन्ग और ताई ची। ये सारी एक्सरसाइज भी जागृति के साथ करनी है। तो यह अभ्यास कि जो भी परिस्थितियां सारे दिन में आती है, जो भी आप काम करते हैं उसको सुनो, वह एक इंपॉर्टेंट मैसेंजर है। और तीसरा है इंट्रोस्पेक्ट, कि तुरंत जितना जल्दी हो सके अपनी जांच करो कि क्यों ईर्ष्या हुई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका सही विचार मेरे क्या होने चाहिए। डर लगा कोई भी बात का तो किस बात को लेकर के डर लगा, मैं कैसे इससे मुक्त हो जाऊं, मुझे भाग जाने की वृत्ति हुई, इसको मैं अवॉइड करूं। आज कई बातें हम अवॉइड करते हैं वास्तव में, और जो काम को आप अवॉइड कर रहे हैं भले कारण आप कोई भी देंगे, कहीं काम को हम पोस्टपोन करते हैं, वो हम कारण कुछ और देते हैं, परंतु वास्तव में अंदर में वह डर है कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर इंट्रोस्पेक्ट करके ये पता चल गया कि यह कारण है मैं क्यों इस काम को पोस्टपोन कर रहा हूं, क्यों किसी को मिलने का मैं अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे में अंदर डर है, तो भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो फिर उसका सामना करेंगे, क्योंकि बेस्ट एंटीडोट ऑफ फियर इज टू फेस इट, कि उसका सामना करें। तो इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, रोज हमको थोड़ी देर यह करनी चाहिए। कि जिससे हम अपने आप को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और स्ट्रेस से भी मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर अली को कंसल्ट कर लिया सबने, हाँ या ना? यस, ओके। हाँ, अभी क्या करना है? अभी चार सीज का आधार लेना कि स्ट्रेस से मुक्त होना है। तो फोर सीज है। कौन से फोर सीज? पहला सी है चैलेंज, परिस्थिति को चैलेंज के रूप में लो। दूसरा सी है कंट्रोल, तीसरा सी है कोप, और चौथा है कम्युनिकेट। तो पहला क्या है? चैलेंज। अगर आप यहां पर देखेंगे फिगर को जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है कि एक परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति के तीन या चार पहलू हो सकते हैं। जब हम उस परिस्थिति से डरते हैं तो दो पहलू को ही डील कर पाते हैं या एक को ही डील कर पाते हैं। जो दूसरे जिनको हम डील नहीं कर पाते हैं वह समस्या करते हैं। जब उसी परिस्थिति को आप चैलेंज के रूप में लेते हो तो चारों पहलुओं को डील कर पाते और हमारे में कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। हाँ बहन, कितना वजन उठा सकते हो? 5 किलो, 10 किलो? हाँ, अभी ओलंपिक्स चल रही है। हाँ, ओलंपिक्स में जीतना है। हाँ, कितना वजन उठा सकते हैं बोलो? 10 किलो उठा सकते। हाँ देखो, आप में कम से कम 500 किलो वजन उठाने की शक्ति है। मैं ये सिद्ध भी कर सकता हूं कि एक बार करीब एक साल का लड़का 1400 किलो की गाड़ी के नीचे फंस गया और तुरंत अगर गाड़ी को उठाया नहीं जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बच्चे को मरने देंगे तो क्या करेंगे? गाड़ी को उठा देंगे। और सचमुच मां वहीं खड़ी थी, उसने गाड़ी को उठाया, एक दो सेकंड नहीं, पूरी एक मिनट तक उठा के रखा कि जब तक बच्चा सेफली बाहर आ गया। तो जब भी हम चैलेंज के रूप में कोई भी परिस्थिति को लेते हैं तो इम्पॉसिबल भी सत्य होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भी इम्पॉसिबल के बारे में सोचो भी जीवन में, और जो भी परिस्थितियों को चैलेंज के रूप में लेते हैं उनका एक स्लोगन होता है। पता है स्लोगन? हाँ, आप सब रिपीट करेंगे मेरे साथ कि नहीं करेंगे? करेंगे, अच्छा। हाँ देखो, वो स्लोगन है, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में। बोलो, हमारी जिंदगी आग को भी बदल देंगे हम बाग में, सर करेंगे आखिर सब मोर्चे, कि आने दो मौत को भी सामने, मौत को भी सामने। तो ऐसा कोई स्लोगन, भले और अच्छा स्लोगन भी लीजिए, लेकिन उसको रिपीट करिए। और जब आप रिपीट करेंगे तो आप में भी वो सिचुएशन को फेस करने की शक्ति आ जाएगी। और ये चैलेंज को बढ़ाने के लिए तीन शब्दों को याद करिए। ऐसे दो स्टेटमेंट है वास्तव में। पहला है फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। क्या? फेस इट, बोलो, फाइट इट और फिनिश। और दूसरे तीन शब्द है ग्रीट इट, मीट इट एंड बीट इट। क्या? ग्रीट मतलब मिलो, टेंशन आए तो बोलो हेलो वेलकम। फिर मीट योर स्ट्रेस, उसको मीट करो, जो भी उसकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरी करो। और थर्ड क्या करेंगे? बीट इट, उसको बीट कर दो। तो इससे चैलेंज के रूप में हर परिस्थिति को लेंगे तो तनाव काफी कम हो जाएगा। दूसरा सी है कंट्रोल। आमतौर पर हम कंप्लेन करते हैं। आप अपने 24 घंटे को जज करिए। ये 24 घंटे में जो आपको विचार आते हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे कि एक दिन में पता है कितने विचार करते हैं? 30,000 से 50,000 विचार। इतने सारे विचार है तो उसको अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे अधिकतर हम कंप्लेन करते हैं। परिस्थिति के बारे में कंप्लेन करते हैं, लोगों के बारे में कंप्लेन, यहां तक भगवान लोग है भगवान को भी कंप्लेन करते हैं। परंतु कंप्लेन करने के बदले यह सोचो कि मेरे कंट्रोल में क्या है, और जो आपके कंट्रोल में है, जो बस में है, वह करते रहेंगे तो तनाव कम हो जाएगा। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो मैं सोच सकता हूं वह है डॉक्टर विक्टर फ्रेंकले का। पता है डॉक्टर विक्टर फ्रेंकले कौन थे? विक्टर फ्रेंकले एक साइकियाट्रिस्ट थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो ज्यूइश थे, जिसके कारण हिटलर की सेना ने उनको बंदी बना लिया था, उनके सारे परिवार को बंदी बना लिया था और उनकी आंखों के सामने परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया, गैस चैम्बर में डाल दिया गया और अलग अलग रीति से उनको भी परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी विक्टर फ्रेंकले डिप्रेस नहीं हुए, उन्होंने सोचा कि मेरे कंट्रोल में क्या है वह मैं करूं। और एक मनोचिकित्सक होने के नाते लोगों के मन का अभ्यास करना वह उनका व्यवसाय था, तो वहां पर उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी उन्होंने और बंदियों के मन का अभ्यास किया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी हुई और उन्हें मुक्ति मिली तो उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका टाइटल है मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। जिस किताब में उन्होंने लिखा बहुत अच्छी बातें ऑब्जर्व की है। एक तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जेल में छोटे छोटे दो चार बिस्किट देते थे, किंतु फिर भी एक महीने के बाद विक्टर फ्रेंकले ने ऑब्जर्व किया कि कुछ बंदी थे जिन्होंने वो बिस्किट बचा के रखे थे। क्यों बचाए होंगे? कैसे बचाए? हाँ कैसे बचाए? हाँ क्यों बचाए बिस्किट? वो तो पूरे नहीं थे, 1/4 भी नहीं मिलते थे, फिर भी क्यों बचाए? नहीं आइडिया। शायद उन्होंने सोचा कि आगे चल के भी बंद कर दे तो अभी जो थोड़े से दे रहे वो भी देना बंद कर देंगे तो कैसे जीवन बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी पावरफुल है कि व्यक्ति 10% खाने से भी जीवन को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कई बंदे थे वो मर रहे थे और कुछ एक थे यह सभी यातनाओं के बीच में भी जी गए। उन्होंने देखा कि कौन जी गया तो छोटी सी बात को भी लोग लेकर के सारी यातनाएं सहन कर ले। एक बंदी ने कहा कि मुझे मेरी बेटी की शादी करानी है, ये छोटी सी बात को लेकर के वह यह सारी यातनाएं झेल गए। तो ऐसे जीवन में कोई ना कोई मीनिंग चाहिए, कोई मकसद चाहिए। अगर जीवन में अच्छा मकसद हो तो कितनी भी समस्याएं आप अच्छा जीवन जिएंगे। इस उदाहरण से सीखना है कि कितनी न भयानक परिस्थिति हो, विक्टर फ्रेंकले जैसी परिस्थिति तो हमारे बीच में नहीं आती है, हमारे बीच में सिंपल प्रॉब्लम आते हैं, तो तुरंत ये पूछो कि मेरे कंट्रोल में क्या है और जो मेरे कंट्रोल में वही सोचना है, वैसा ही मुझे समय बिताना है। कोई ना कोई चीज हमारे कंट्रोल में जरूर होती है। तीसरी बात है कोप, अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाओ। ये सोचो कि मैं कोई नई स्किल्स को सीखूं, कोई आर्ट सीखूं, कोई नई किताब पढ़ूं और कोई बातें मेरे में आए तो मेरी कोपिंग एबिलिटी बढ़ेगी। ये सारे कोर्स में भी जो आपको बातें बता रहे उसको भी स्टडी करिए कि जिससे भी आपकी कोपिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और चौथी बात है कम्युनिकेट, कि जब भी टेंशन हो सके तो अपने आप को पॉजिटिवली समझाइए, परंतु जब लगे कि तनाव बढ़ रहा है तो अपनी फीलिंग औरों को बता दीजिए, बल एक व्यक्ति को भी। एक भी व्यक्ति जो आपका मित्र है, आपकी बातों को सुनता है, उसको मन की बात बता दो तो आप हल्के हो जाएंगे। यहां तक कि जब परिस्थिति विकराल बन जाए, बहुत बड़ी परिस्थिति आए, तो भले रो लेना भी अच्छा है, क्योंकि आंसुओं में दो हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड कॉर्टिसोल। ये प्रोलैक्टिन एंड कॉर्टिसोल दोनों स्ट्रेस हार्मोन है कि अगर वह शरीर से बाहर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। बल बार बार नहीं रोना चाहिए, क्योंकि बार बार रोने से आपकी कैपेसिटी कम होती है, परंतु जब असह्य समस्या हो तो रोना भी अच्छी चीज है। इन 4 C's को अपनाइए। और एक जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि हमारी भाषा भी इंपॉर्टेंट है। कहती जैसे हम भाषा का उपयोग करते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। यह भी एक अपने आप में विषय है कि हम अपनी लैंग्वेज को अगर इंप्रूव करें तो आप जीवन में सफल भी ज्यादा होंगे। किसी को मिलते हैं तो भी जो भाषा का आप उपयोग करते हैं ऐसा ही आप फील करते हैं। ऐसे ही स्ट्रेस फ्री लाइफ में भी भाषा को चेंज करना, कई लोग कहते हैं कि थोड़ा तनाव जरूरी है, परंतु वास्तव में थोड़ा भी तनाव जरूरी नहीं है। तनाव मतलब बुरा, अच्छे तनाव को यू स्ट्रेस भी कहा गया है, परंतु मैं सोचता हूं उसमें भी तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस। तो हमें अलग शब्द का उपयोग करना चाहिए। अगर आप इस ग्राफ को भी देखेंगे कि जब आपके ऊपर कोई डिमांड आती है तो शुरू में आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, कैपेसिटी बढ़ती है, परंतु जब वो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो परफॉर्मेंस भी वास्तव में कम होता है। हमने कॉलेज के बच्चों का ही के विषय में बात की थी कि वर्ष की शुरुआत में बच्चे 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते, परंतु एग्जाम के दिनों में कितना पढ़ते हैं, हाँ 20 घंटा भी पढ़ लेते हैं। कैसे? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर था। तो उसको स्ट्रेस नहीं कहेंगे, उसका हमें और शब्द का उपयोग करना चाहिए जिसको कहेंगे मोटिवेशन, या तो प्रेरणा, कंसर्न। जैसे कोई बात की कंसर्न होती है तो हमारे में इंप्रूवमेंट आती है। तो जो हिस्सा हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है वह वास्तव में वो मोटिवेशन का हिस्सा है। जब भी मोटिवेशन वो स्ट्रेस में अगर कन्वर्ट हो गया तो वो बुरा है। इसलिए इस बात को पक्की करिए, और जब भी स्ट्रेस शब्द का हम यूज करते हैं वह वास्तव में बुराई है। और देखा गया है कि केमिकल्स में भी डिफरेंस है। जब आप मोटिवेट होते हैं तो कोटेकोलामाइंस नाम के केमिकल्स निर्माण होते हैं कि जो अच्छे है, एक्सरसाइज करते हैं तब भी कोटेकोलामाइंस निर्माण होते हैं, लेकिन जब भी तनाव होता है तो कॉर्टिसोल निर्माण होता है। ये कॉर्टिसोल वो स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम करता है, यहां तक ब्रेन को भी डैमेज करता है। तो इसके कारण तनाव को हमें कम से कम कर देना है। और एक अगर पावरफुल स्टेप को लेना हो, श्री अरविंदो ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वी आर अनकंडीशनल स्पिरिट्स टैप्ड इन कंडीशंस लाइक अ सन इन एक्लिप्स। जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है ऐसे वास्तव में वी आर इनफैक्ट अनकंडीशनल स्पिरिट्स। चीजें जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है वास्तव में। देखिए पृथ्वी कैसी दिखती है, हाँ पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, प्लेन दिखाई देती है, परंतु आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी प्लेन नहीं है, पृथ्वी तो गोल है, दिखाई नहीं देती है। किसी ने देखी है? हमने तो नहीं देखी। ऐसे ही दिखाई क्या देता है कि सूर्य है वो पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही दिखाई देता है। ये भी सनराइज होता है, दूसरी दिशा में सनसेट होता है, परंतु हम जानते हैं कि सत्य नहीं है। वास्तव में पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। तो ऐसे ही जीवन में भी चीजें जैसे दिखाई देती है वैसे नहीं है। एक और बात को देखना हो तो हम भी जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है। कौन यहां आएगा? आप यहां आएंगे? हाँ आइए आइए, हाँ आप आइए, चश्मा पहने, यस यस। हाँ देखिए एक छोटी सी गेम हम करेंगे कि व्यक्ति जैसे दिखाई देता है वैसा नहीं है। हाँ जी क्या नाम है? बीके शर्मा। बीके शर्मा, हाँ हाथ मिलाइए। हाँ डरिए नहीं, सिंपल बात है, आइए आइए, हमारे मित्र है आप। हाँ देखो मिस्टर पीके शर्मा से मैं एक दो प्रश्न पूछूंगा, हाँ फिर आपको पूछना है, पूछेंगे ना सब? अच्छा हाँ शर्मा साहब अपना चश्मा देंगे। पहला प्रश्न है किसका चश्मा है, किसका है चश्मा?
मेरा
है। हाँ, आप ही बोलिए, हमको बोलने, आपको पूछना है प्रश्न, आपको जवाब नहीं दे रहा है। हाँ मिस्टर शर्मा का चश्मा है, बराबर है ना। दूसरा प्रश्न, क्या चश्मा मिस्टर शर्मा है?
जी नहीं।
हाँ चश्मा मिस्टर शर्मा नहीं है। हाँ, मिस्टर शर्मा अपनी घड़ी देंगे, मैं वापस दे दूंगा। किसकी घड़ी है? हाँ दूसरा प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। हाँ ठीक से नहीं पूछ रहे हो, क्या घड़ी मिस्टर शर्मा है? नहीं है। अच्छा हाँ पहला प्रश्न, प्रश्न पूछना है आपको, पूछो पहला प्रश्न। ये हाथ किसका, किसका है हाथ? मिस्टर शर्मा का हाथ है। हाँ दूसरा प्रश्न, हाँ क्या मिस्टर शर्मा हाथ है?
जी नहीं।
जल्दी मान गया ना, तो लोग कहते मैं हाथ हूँ। अच्छा हाँ, तो मिस्टर शर्मा हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, तो कौन है? हाँ अच्छा, देखो दूसरी एक सिंपल बात हम लेते हैं, ऐसा किसी को भी नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ पर किसी का सीरियस एक्सीडेंट हो जाए और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़े, हाँ तो यहाँ कोई डॉक्टर है? हाँ डॉक्टर कौन है? हाँ खड़े हो जाइए, यहाँ डॉक्टर साहब देखो खड़े हो गए। हाँ तो आप क्या कहेंगे? तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, क्या कहेंगे? पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले आओ। हाँ और ऑपरेशन करते करते पेशेंट का देहांत हो जाए तो क्या कहेंगे? बॉडी को बाहर ले जाओ। तो अंदर गया तो पेशेंट था, बाहर आया तो बॉडी हो गया, क्या चला गया? हाँ आत्मा, जो भी नाम दो, भले आप आत्मा कहीं को कहना अच्छा नहीं लगता। हाँ तो आत्मा है, स्पिरिट है, एक लाइफ एनर्जी है। हाँ मिस्टर शर्मा कौन है? एक लाइफ एनर्जी, एक आत्मा है, शरीर से भिन्न शक्ति है। एग्रीड? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दे। अच्छा ये सब मैं वापस दे रहा हूँ, आप सभी साक्षी है। हाँ थैंक यू शर्मा सर, भले बैठिए। क्या करेंगे? हाँ ताली तो बजाओ, देखो शर्मा साहब ने आके कुछ सिखाया आपको। तो इससे क्या पता चला कि सचमुच हमारे में एक लाइफ एनर्जी, वी आर अनकंडीशनल स्पिरिट्स। बस ये भी याद करो कि भी हमारे पर कोई ग्रहण नहीं लगना चाहिए, न परिस्थिति का, न लोगों का। ये चीजें तो आएगी और जाएगी। रमण महर्षि ने बहुत अच्छी बात बताई है, उन्होंने सोचा कि भी मैं ये पांच इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये पांच कर्मेंद्रियां नहीं हूं, मैं पांच ज्ञानेंद्रियां भी नहीं हूं। ने तो ये भी सोचा कि भाई मैं फीलिंग्स भी नहीं हूं, क्योंकि फीलिंग्स तो आती है और जाती है, परंतु मैं तो सदैव हूं। अगर सचमुच देखे तो आत्मा का भी जो एसेंस है, बल फीलिंग्स भी आत्मा में ही है, परंतु आत्मा का जो एसेंस है वह सदैव स्टेबल है। इसको मैं सुप्रा कॉन्शियस कहता हूं कि वह सुप्रा कॉन्शियस वह सदैव स्टेबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो यह हम याद करें कि मैं वह अनकंडीशनल स्पिरिट हूं। और पानी का मूल गुण कैसा है? पानी कैसा है, ठंडा या गर्म? ठंडा। लेकिन पानी अग्नि के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है, लेकिन फिर से अग्नि से दूर कर दो चार घंटे के बाद ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा का भी मूल गुण शांति, प्रेम और पवित्रता है, परंतु आत्मा जब शरीर के संपर्क में आती है तो अशांत हो जाती है, नफरत निर्माण होती है। फिर से शरीर से अलग कर दो, दोबारा शांति का अनुभव करने लगे। बस ये सिंपल प्रैक्टिस करनी। ये शरीर एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है, मानव कभी भी निर्माण नहीं कर पाएगा, परंतु उस कंप्यूटर को भी जैसा प्रोग्राम दिया जाए, हरीश भाई कंप्यूटर को जैसा प्रोग्राम देंगे वैसे ही काम करता है। तो आत्मा है वह शरीर को भी प्रोग्राम देती है। शरीर बहुत अच्छी गाड़ी है, आज देखो 6 करोड़ की गाड़ी आ गई, परंतु फिर भी उस गाड़ी, बोले ऑटोमेटिक गाड़ी है परंतु ड्राइवर तो चाहिए। तो इसे आत्मा वह शरीर रूपी वंडरफुल गाड़ी का ड्राइवर है। तो ये जागृति भी हमारे में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है और स्ट्रेस कम हो जाती है। साथ ही साथ आवश्यकता है कि हम अपने थॉट्स को मैनेज करें। आपका एक सारा सेशन होगा कि इतने सारे विचार है तो उनको अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे विचार करते हैं उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए रोज आप पुराने कपड़े पहनते, कभी भी चाय नहीं गिरती है, परंतु जिस दिन ब्रांड न्यू कपड़े पहन के जाते हैं उसी दिन चाय गिर जाती है। क्यों? क्यों? हाँ क्यों? हाँ कि नहीं, या तो हमने सारे दिन में बहुत बार सोचा, 50 बार 100 बार, कहीं चाय तो नहीं गिर जाएगी, चाय तो नहीं गिर जाएगी, तो शायद उसी परिस्थिति को खींचते। कहते हैं कि थॉट्स ऑल्सो हैव अ मैग्नेटिक पावर, जैसे आप विचार करते हैं वैसी परिस्थिति उससे सचमुच निर्माण होती है। तो इसलिए विचारों को अच्छी तरह से हमें मैनेज करना, और जितना मैनेज करेंगे विचारों को, 8 प्रकार के विचार हैं, वो आठों प्रकार के विचार अंडरस्टैंड करके मैनेज करेंगे तो अच्छी तरह मैनेज कर सकेंगे। कहते हैं कि हर दिए तले अंधियारा होता है, हर अंधियारी रात के बाद सबेरा होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। तो पक्का याद करके पॉजिटिव बने। देखिए बच्चे ऑटोमेटिक पॉजिटिव होते हैं। एक छोटे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज हुआ तो उसके दोनों पैर काट लेने पड़े। उसके पिताजी उसे कंधे पे उठा करके जा रहे थे तो रास्ते में उसे एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर मिले। उन्होंने पूछा, बेटा ये कैसे हुआ, तुम्हें कैसे फील हो रहा है? तो उस बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बच्चे ने कहा, अंकल आपको पता है दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए भगवान को बहुत काम करना पड़ता है, और भगवान को बहुत काम करने के लिए मेरे पैर ले लिए ताकि भगवान अपना काम कर सके। तो बच्चे ऑटोमेटिक पॉजिटिव, और हर बात में आप अगर कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव बात आपको जरूर मिल जाएगी। हो सकता है कि आप कहें कि भी पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है, हर परिस्थिति में पॉजिटिव नहीं सोच सकते। अगर आपको ऐसा भी लगे तो कम से कम राइट थिंकिंग तो जरूर करिए। राइट थिंकिंग का क्या मतलब है कि परिस्थिति जैसी है वैसी ही उसे देखो। अगर 80% प्रॉब्लम है तो उसको 90% नहीं बनाओ, 10% प्रॉब्लम है उसको 50% नहीं बनाओ, उसको 10% ही रहने दो। तो ऑलवेज क्या करो, राइट थिंकिंग करिए। और वास्तव में ऐसे 12 डिफरेंट वेज है कि जिसके द्वारा हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं, आगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ 3 तरीके बताता हूं कि कैसे 3 तरीकों से हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं। कौन से 3 तरीके? पहले तो जिसे कहते हैं ऑल या नन अप्रोच, कि हम एक्सट्रीम में सोचते हैं। वास्तव में लाइफ एक्सट्रीम नहीं है। एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपने बच्चे को कहा, वो एसएससी में था, कि बेटे 95% आने चाहिए। अगर 90 तक आए तो ठीक है, परंतु 90 से कम आ गए तो तुम बेकार हो, कोई काम के नहीं। बच्चे ने बहुत कोशिश की परंतु अनफॉर्चुनेटली उसके 88% आए। तो पिता ने उसे क्या अच्छी बुरी बातें सुना दी कि तुम बेकार के हो, मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और यह सब सुन के वो लड़का एकदम पहले तो सीरियस हो गया, 2-3 दिन तक कुछ नहीं बोला, और 3 दिन के बाद वह पागल हो गया। ये सत्य घटना, आज भी वह लड़का पागल है, उसका इलाज चल रहा है परंतु ठीक नहीं होता है। ये शायद एक्सट्रीम एग्जाम्पल है रॉन्ग थिंकिंग का, परंतु ऐसा ना करें। राइट थिंकिंग क्या होता, उसको कहते चलो 88 आए, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 90 से ज्यादा आए, थोड़े परसेंटेज कम आए। तुमको क्या करना चाहिए था, कहां तुमने टाइम वेस्ट किया, स्टडी की जो टेक्निक थी उसमें कहां तुमने मिस्टेक की, पेपर लिखने में कहां मिस्टेक की, चलो इन सब को हम इंप्रूव करेंगे, तो शायद एचएससी में उसके 95 भी आते। इसलिए कभी भी ऑल या नन अप्रोच ना करें। दूसरा तरीका है कि हम कई बार कंक्लूजन पर जंप कर जाते, तुरंत कोई बात का निर्णय कर लेते, वह भी गलत है। सोचते नहीं है परिस्थिति के बारे में। एक जज थे, उनकी पत्नी उनको रोज अच्छा गरम खाना बना करके देती थी जब भी वो कोर्ट से आते थे। एक दिन जब आए और उनको खाना मिला तो ठंडा खाना था, तो इतना गुस्से में सारी थाली उड़ा के फेंक दी। और कहा, ये भी कोई खाना होता है? अभी मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, इसलिए तुमने ऐसा खाना बनाया। परंतु वास्तव में क्या हुआ था, ये जंपिंग टू कंक्लूजन है कि भी निर्णय कर लिया। राइट थिंकिंग क्या होता, सबसे पहले तो कि भी साल में 364 डेज तो मुझे गर्म खाना मिला है, एक दिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं। दूसरा पूछते भी कि भी क्या हुआ, वास्तव में क्या हुआ था कि उनका लड़का बीमार हो गया था और उनकी पत्नी उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, वहां बड़ी लाइन थी, 4 घंटे तक वहां बैठी रही। तो क्योंकि राइट सिचुएशन को नहीं देखा तो इसके कारण इतना बड़ा तनाव हुआ। अर्थात कि कभी भी कंक्लूजन पर जंप ना करिए। तीसरा तरीका है जिसको कहते ऑलवेज मेंटेलिटी, कि प्रॉब्लम ऑलवेज नहीं आते, कभी कभी आते। ऐसे लोग सोचते हैं कि हमेशा मेरे ही सामने प्रॉब्लम आते हैं। एक बार एक वक्ता को किसी ने प्रश्न पूछा तो उस वक्ता ने जवाब दिया, क्या फालतू प्रश्न है, ऐसा भी कोई प्रश्न होता है? तो ये रिएक्शन लेने के बाद उस व्यक्ति ने जीवन भर प्रश्न पूछना ही छोड़ दिया। वो हमेशा यह सोचता था कि भी कभी भी मैं कुछ पूछूंगा तो मुझे वक्ता यही जवाब देगा कि क्या फालतू क्वेश्चन है, मुझे प्रश्न पूछना ही नहीं आता। परंतु सत्य हकीकत क्या थी कि उस वक्ता को उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता था। उसके कारण उसने कह दिया कि क्या फालतू प्रश्न है। और ऐसा हमेशा नहीं होता है। राइट थिंकिंग क्या है? हो सकता है कि एक बार मैंने फालतू क्वेश्चन पूछा, लेकिन दोबारा तो मैं सोच समझ के पूछूंगा तो फालतू प्रश्न नहीं होगा। और हर वक्ता ऐसा नहीं होता है। कुछ तो ऐसे भी वक्ता होंगे कि जो मुझे अच्छी तरह से जवाब देंगे। राइट थिंकिंग के साथ साथ हमें अपने इमोशंस को भी डील करना सीखना है। कहते हैं कि हमें इमोशनली भी इंटेलिजेंट बनना है। और आज क्यों तनाव बढ़ रहा है? क्योंकि हम अपने इमोशंस को हमने डील करना नहीं सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन अगर हम देखें कि जिसको हमें डील करना नहीं आता है, वह है एंगर। क्रोध सबको समस्या निर्माण करती है। और अगर हम अपनी बिहेवियर को एक स्पेक्ट्रम के रूप में हम देखेंगे, दिस जंपिंग टू कंक्लूजन की हमने चर्चा कर ली, हाँ ऑलवेज मेंटालिटी के लिए ओके, हाँ कि अगर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सप्रेशन हम अपने बिहेवियर को हम देखें तो एक कोने में तो है सप्रेशन, जब भी कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, तो सप्रेशन तो अच्छा नहीं है। और दूसरे कोने में एंगर, एंगर भी अच्छा नहीं। अगर सप्रेशन कैंसर निर्माण करता है तो एंगर वो हार्ट अटैक निर्माण कर सकता है। ऐसे भी किस्से हैं कि जो बहुत एंगर में जिनका हार्ट फट गया। परंतु सबसे अच्छा रास्ता जो कहा गया है कि बीच का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। तो हमारे बिहेवियर को मैनेज करने में भी बीच का रास्ता वह सबसे अच्छा है। और बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता है कि एसर्टिव बिहेवियर, कि आपकी जो फीलिंग्स है उसको एसर्ट करिए, व्यक्त जरूर करिए परंतु मन को स्टेबल रख करके करिए, बैलेंस बना करके करिए। जब क्रोध में आते हैं तो क्रोध वक्त चंद पलों के लिए पागलपन, आपको सीखना है कि भी कैसे स्टेबल रहे, कैसे एंगर को मैनेज करने सीखना है, हाँ या ना? यस, हाँ। तो हाँ, दो बहनें और दो भाई यहाँ आ जाएंगे, हाँ जल्दी जल्दी आइए, कौन ऑफर करेगा? हाँ ये और एक बहन आइए, हाँ किसको ज्यादा गुस्सा आता है? हाँ भाई भी, दो भाई आइए जल्दी जल्दी, हाँ अच्छा आइए, हाँ और किसी को गुस्सा आता है आइए, हाँ देखो, हाँ स्टेज पे आ जाइए पहले, हाँ पार्टनर नहीं, अरे वाह, हाँ चलो आप, हाँ दो बहन जी आ गई, बहुत अच्छा, यस, हाँ तो आप पार्टनर है, हाँ दोनों पार्टनर है, आप दोनों भी पार्टनर है, ठीक है। एंगर के बारे में समझना है ना, हाँ गुस्सा करके दिखाओ, क्या गुस्सा करके दिखाओ, हाँ करके दिखाइए गुस्सा, नहीं आ देखो क्या हुआ, झूठ मूठ का गुस्सा किया ना, सचमुच गुस्सा आया नहीं आया ना, झूठ मूठ आया ना कि सच्ची आया गुस्सा? झूठ मूठ, हाँ क्यों, यहाँ सच्चा गुस्सा क्यों नहीं आया? हाँ हॉस्पिटल में, हाँ पैसे पता है, अच्छा या तो कारण है कि भी गुस्से का कोई कारण नहीं। एंगर इज नेवर विदाउट रीजन बट सेल्डम अ गुड वन। गुस्सा कारण बिगर नहीं होता है, कोई ना कोई कारण जरूर गुस्से का होता है, परंतु वह कारण अच्छा नहीं, बहुत रेयरली अच्छा कारण, लाख में एक आध बार क्रोध का अच्छा कारण हो सकता है। अच्छा अभी आपके पास कोई चीज हो, बहुत गुस्से में अपने पार्टनर को दो, दो गुस्से में अपने पार्टनर को दो, हाँ एक ऐसे नहीं, मैं दे के दिखाता हूँ। हाँ
लो
लो, क्या हुआ?
गिर गई।
उनके तक नहीं पहुंची क्योंकि गुस्से में दी। तो ऐसे गुस्से में जो आप रिजल्ट चाहते हैं वह रिजल्ट नहीं। अधिक तो देखो हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं कि बच्चे पढ़े, परंतु क्रोध करने से बच्चे पढ़ते हैं? सचमुच बच्चे नहीं पढ़ते। शायद आपके सामने किताब खोलेंगे परंतु आपको गालियां देते होंगे, कैसे माँ बाप है। और हम बच्चों को कंट्रोल शुरू में करते लेकिन आगे चल के बच्चे हमको कंट्रोल करने। देखिए दो 11 साल की लड़कियां आपस में चर्चा कर रही थी, ध्यान से सुनना कि हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या चर्चा करते हैं आपस में। एक लड़की कहती है अपनी सहेली को कि चल कुछ शरारत करते हैं ताकि मम्मी को गुस्सा आए। मम्मी को गुस्सा आता है तो मुझे बहुत मजा आता है, मम्मी को गुस्सा आता है तब भल मुझे अपने कमरे में बंद रहना पड़ता है, परंतु मैं सोचती हूं कि मैं मम्मी को कंट्रोल कर रही हूं, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ऐसे आगे चल के बच्चे भी सीख जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या करना चाहिए। और भी थोड़ा सा हम देख ले, हाँ भले जरा साइड में खड़े रहेंगे तो, हाँ भले यहां ही रहिए आप। हाँ ओके। कि कई लोग यह सोचते हैं कि भी क्रोध तो जरूरी है, क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। परंतु दो बहुत ही सीनियर साइंटिस्टों ने अपने विचार काफी सोच समझ के दिए। एक तो है डीन ऑर्निश, कि जिन्होंने हार्ट की डिजीज के बारे में रिसर्च करके वो वर्ल्ड फेमस हुए। बहुत यंग थे, 28 साल के ही थे, उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी थी। और डीन ऑर्निश कहते हैं कि सिर्फ कि भी एंगर को के बारे में जानना और उसको एक्सप्रेस करना वही काफी नहीं है। जब हम सिर्फ जान के एक्सप्रेस करते हैं तो वास्तव में जैसे हम अंधेरे में भटक रहे हैं, हमें पता नहीं कि क्या करना, और वह सही बात नहीं है। ऐसे ही दूसरी एक बहुत अच्छी किताब है द मिसअंडरस्टूड इमोशंस। तो इसमें भी लेखक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल कारण है, साइकोलॉजिकल कारण क्रोध को एक्सप्रेस करने के अगर हम सोचते हैं, और इसके बारे में जो रिसर्च भी हुई है उन सब रिसर्च से भी यह पता चलता है कि वास्तव में क्रोध को एक्सप्रेस करने से फायदा नहीं होता है, उल्टा जो हमें प्रमाण मिले उससे विपरीत है कि क्रोध को एक्सप्रेस करने से तो बुरी इफेक्ट होती है। अल्टीमेटली उस प्रकार की एक आदत पड़ जाती और हमारे संस्कार ही क्रोध के बन जाते हैं, तो यह सत्य नहीं है। अब हमें करना क्या चाहिए ना? क्रोध से मुक्त होना है ना सभी को, क्रोध से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए?